तक मनुष्य में राग द्वेष है तब तक उसका कल्याण संभव नहीं। राग द्वेष के त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। राग द्वेष के त्याग के बहुत से उपाय बताए, कर्मयोग के द्वारा भी राग द्वेष का त्याग हो, ज्ञान के मार्ग में भी राग द्वेष के त्याग की आवश्यकता है और भक्ति के मार्ग के में भी राग द्वेष के अभाव की आवश्यकता है। तो राग और द्वेष के जितनों अभाव हो गए है उतना ही सुंदर चाहिए कि वो परमात्मा के निकट पहुंच, और जितनों अधिक राग द्वेष है उतने वो परमात्मा से दूर। इस सिद्धांत अपने शास्त्रों के बीच के मां इसके नाश के लिए बहुत से सरल उपाय बता रहे हैं जो हर एक आदमी कर सकता है, इसमें कोई विद्या की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता नहीं, रुपयों की आवश्यकता नहीं, कोई वर्ण आश्रम की आवश्यकता नहीं। तो आवश्यकता है अपने कर्तव्य कर्म को करने की, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? पति के सुख के लिए ही पति की सेवा पुलिस का अंबार, पति के सुख के लिए पति की सेवा, पति की सेवा के प्रकार से वो ऐसी पति की सेवा कि जिसमें व्यविचार दोष नहीं होता, ऐसी जो पति की सेवा है तो पति सेवा से ही स्त्री को कल्याण हो जाए। जैसे भगवान की भक्ति करने से भक्त को कल्याण हो जाए उसके लिए ये साधन बतलाया है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में मान के ये विचारे ने भक्ति योगी ने सेवते से गुणाम संते चेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो भाव यो है मूल परमात्मा को जो अभिविचारिणी भक्ति योग के द्वारा जो सेवता है, मुझ परमात्मा की जो भक्ति करता है वो इन गुणों से अतीत होकर के ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाता है, उसके लिए वो पात्र बन जाता है। पात्र बनने के साथ ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, पात्र बनने की आवश्यकता है। अभी विचार में भक्ति क्या है कि जिस भक्ति में वे विचार जोश में बैठे, भक्ति में वे विचार जोश क्या है कि भगवान की जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा में चित्त को समावेश करो योग, तो उसके बीच के बाद जो है भगवान में प्रेम हुए और किसी में प्रेम नहीं हुए, दूसरे में प्रेम हो तो प्रकार से मन दिल चार दोष है भगवान के स्वास्थ्य, दूसरी चीज का भोग है संसार है, किसी भी संसार के पदार्थों में भी अरे भगवान में भी प्रीति है तो वो भगवान में प्रीति भक्ति अनंत भक्ति नहीं। इसी तरह से वह जो अति प्रकाश की है उसकी प्रीति अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष में नहीं, और दूसरे पुरुष में हमें तो पति प्रकाश, इसी प्रकार से वह अनन्य भक्ति नहीं जो दूसरे में भी भक्ति हुए भगवान में भी हो, जो है उसमें शिष्य की जो भी अनन भक्ति हुए वो एक प्रकार से थी गुरु को अनन भक्ति। जैसे कोई कपड़ों है ये पंच है तो ये मेरे प्रति अपने सर्वस्व अर्पण करते कर्पूर भी है तो सूत्रधार के वो अर्पण है सूत्रधार जितने भी अगर उन्होंने चाहो तो इस तरह से थी गुरु के लिए वो कर्पूर भी बन जा रहे तो गुरु नेता जैसे ही रहते तो केवल गुरु की भक्ति से थी लोगों कल्याण। उदाहरण के लिए जैसे ज्यावाला को पुत्र जो सत्य काम है उनको गुरु भक्ति से कल्याण हो गए तो दूसरे कोई भी साधन नहीं। मैंने गुरु हुक्म दियो तो ये 400 ग्रवण ले जाओ तरह इसको लिया ना संकेत हो कि 1000 उत्तर दिया तो वहां गवान की वृद्धि होती होती जब 1000 होगी तो उन्होंने से एक बैल ने यह बात कही कि हमारी संख्या 1000 हो गई अब गुरु के पास ले वो गुरु के पास लेकर के आया तो रास्ते में उसको ज्ञान हो गया बैल के द्वारा मुर्गी के द्वारा हंस के द्वारा इत्यादि बनाया तो आपने ज्ञान हो गया गुरु के पास पहुंचे से गुरु ने ये कहा कि तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम होता है कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति है तुम्हारे चेहरे की शांति या बात पता है। कहा कि प्रभु आप जो कहो सकते फिर भी मैं आपके मुख से भी सुननी चाहूँ तो गुरु ने भी उपदेश दिए मैंने ज्ञान तो पढ़ा तो अब गुरु सभी उपदेश है अपना शरीर अर्पण कर चाहे गऊ चराने के लिए कहो और चाहे भैंस चराने के लिए कहो और चाहे बर्तन मानने के लिए उनको एक ही बात तो अपना शरीर है जो उनका अर्पण कर दो शरीर पर अपना अधिकार दे परमात्मा इसी प्रकार से एक प्रकार से और बहुत सी कथा है उनको शरीर जो सत्यता उनको जो शिष्य है वो अपने गुरु की सेवा करी तो मैंने भी इसी तरह ज्ञान तो ये उचित बात यह शास्त्रों में बहुत दृष्टांत है कि केवल गुरु की सेवा से ही उनको कल्याण हो जाना शिव जो वायु में जो महात्मा पुरुष है जिज्ञासु महात्मा की सेवा करके के और महात्मा को जो अनुयायी है मन को हल्क है और मन को अनुयायी मन को बंद हुक्म के मापक जीवन दिखा रहे मैं वो कल्याण हो जाए सोच कर करूँ क्या और फिर साक्षात जो भगवान है मैं को अनंत भक्त बन जावे तो उसके लिए तो भगवान घोषणा करे भक्ता तो नन ने आशक्य है ऐ मेरे रंग देव मैंने ज्ञातम दृष्टम सत्य न परिविष्टम चपलम कर ग्यारह 14 भगवान कहते हैं भक्ता तो मन में अशक्य मैं अनंत भक्ति से थी एवं विजय इस प्रकार का दर्शन दे सकता हूँ जैसे तुझको दर्शन दिया इसी प्रकार का दर्शन में जो मेरी भक्ति करे उसको मैं दे सकता हूँ साक्षात नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ दृष्टम तत्व के द्वारा मुझको देख सकता है और तत्व से जानना चाहे तो मुझको जान सकता है ज्ञान के द्वारा जान सकता है बात पूछे ना बुद्धि के द्वारा भक्त तो मुझको जान सकता है ज्ञान क्या बुद्धि का कार्य है बुद्धि की वृत्ति है और मुझमें प्रवेश करना चाहे मुझमें तो मुझमें प्रवेश कर सका किससे आनंद भक्ति से मेरे को साधन आनंद भक्ति अनंत भक्ति क्या कि भगवान के सिवा और अन्य जगह भक्ति में अनंत भक्ति अनंत भक्ति को, अनंत प्रेम को, एक ही बात है तो फिर भगवान की प्राप्ति जैसे संख्या। माता पिता जो है उनकी भक्ति करने से लड़के को कल्याण होता है। जैसे मूकचंदाल को जो है माता पिता की सेवा से कल्याण हो गए, माता पिता के सहित वो परम गति को चले गए। पति की सेवा से सुदामाओं की जो स्त्री है पार्थिवर धर्म के प्रभाव से भगवान के परम धाम को चली गई। कर्कल वैश्य की स्त्री शुक्ला जिसको नाम है वो पार्थिवर धर्म के प्रभाव से परलोक को चली गई। किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेकर ये दिखला गया कि इस प्रकार से कर दीजिए। राजा युधिष्ठिर ने अपनी माता की सेवा ताऊ ताई की सेवा करके दिखला दिया कि इस तरह से उड़ती है सेवा। आज संसार के बीच के मां जो लड़का नीट होता है उसके माता पिता से पूछा जाता है कि आपका लड़का कैसा है तो पूछिए मत, वो तो कंस का होता है। कंस की उपमा दी जाती है जो लड़का नीच होता है, क्योंकि कंस इतना बदमाश था कि माता पिता को कैद कर उनका राज खोज करके राज करने लगा था और अपने बहन और बहनी को जो भी कैद में डाल दिया था तो अपने जो भांजे है उनको जान से मार डाला। इस वास्ते निष्ठता में उदाहरण कंस को दिए जाए। किसी को अच्छे लड़कों और उसके माता पिता ने पूछा जाए कि आपका लड़का कैसा है तो वे उदाहरण देते हैं कि क्या पूछो, हमारा लड़का तो साक्षात शरण है, शरण। शरण की शरण जो है बात तो ज्यादा भी मालूम है ना, सुन के भी शरण लो माता पिता को भाई पढ़ो, पर मेरी कथा को ज्ञान बहुत कम आ सकता। तो नाव को लड़को अपने माता पिता को बोलो अच्छे भाग से रखो, इसलिए उनको नाम हो गयो, जैसे भगवान को नाम हो गया ना मर्यादा प्रसो। और कोई अच्छे शासन हो रहे बोले वहां की क्या बात है, वहां तो राम राज्य है, वहां की कोई बात ही क्या है, वहां तो राम राज्य। महाराज जिसको को जो राज्य है वो भी बहुत अत्यंत है तो महाराज जिसको को नाम धर्मराज। इतने दोनों का प्रभाव है कि जिस दिन हमें बात करता वह मनुष्य धर्मात्मा हो जाता। अरे उसको किसी सोचते इसी तरह से शरण ने जो है सो अपने नाम पा ली। शरण की जो कथा है या वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के में आती है, जिस तरह की जिस भगवान राम लक्ष्मण और सीता ये जो वन में गए हैं उस समय के बीच के मां जो है श्री राम को लक्ष्मण को जो है कैकेयी ने ये वस्त्र ला करके दिए बलकल के। बलकल के वस्त्र पहन लिए मृगशाला वाली और सीता को भी ला करके अपने सुनियों की मुनिया की अस्थिया जैसा वस्त्र पहरे ऐसा जाकर उसके बाद से बलकल वस्त्र किया। और सीता बिचारी लगे तो कर भगवान को बोले महाराज मन नहीं जानते हैं कि मुनियों की अस्थिया कैसे वस्त्र पहनती है। तो भगवान समझे की दिन की गाल समझ करते थे अब वो वस्त्र लेकर बोलिए सीता को पढ़ने के बाद करें उस समय के वहां सभा और सारी प्रजा जिसको देकर के रोड़े तो उस समय बशीर जी जो है, बशीर जी ने कहा अरे दूसरे चेत तुम्हें शर्म नहीं आती है, सीता को तुम बिल्कुल बच्चर देती है पहले के मुझे तुम्हें लज्जा नहीं आवे, तुम्हें राजा दशरथ से क्या ये वरदान मांगा है, राम के साथ में सीता भी एक प्रकार से बिल्कुल बच्चर पहन करके जाए, यदि तुमने ऐसा वरदान नहीं मांगा है तो तेरा क्या अधिकार है कि तू इसको करे कि तू बिल्कुल बच्चर है, सीता जो जाती है वो तो अपनी भक्ति से पति की सेवा करने के वास्ते अपनी इच्छा से जाती है, इसमें कोई बर्बाद नहीं है, एक इच्छुक हो गई बशी जी ने आज्ञा कर दी कि सीता इन्हीं वस्तुओं से जाएगी, जो सीता और राम लक्ष्मण विदा हो गए उस समय दशरथ जी सुमंत में गई कि सुमंत धर्म दशम कर रहा हूं जब जी लौट कर वापिस नहीं आवे तो तुम सीता को समझा करके वापिस ले आना, इस जगत जननी को वापिस ले आना, सीता जी आ जाएगी तो मेरे प्राणों के लिए आधार बन जाए, ठीक है। सुमंत ने बहुत कुछ कहा किंतु सीता कब मानने वाली थी, सुमंत लौट करके आ गए। राजा दशरथ ने पूछा कि सुमंत तुम आ गए, हाँ महाराज कहने नहीं है, हाँ महाराज मैंने बहुत चेष्टा की समझाने की किंतु किसी प्रकार से वो नहीं आई अपने पति के साथ ही थी। दशरथ जी ने कहा हारे मैं मारा गया, अब मेरा संसार में जीवन नहीं, अच्छा मुझको कौशल्या के भवन में लेकर वहीं मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि हे विधाता मेरी मृत्यु निश्चय होगी, मेरे मरने के बाद में मेरा जो शव है उसको केक नहीं छुना था, सब लोगों ने मैं कहूं थे केक मैं छुना जो मैं पुत्र भर्ज भी नहीं छुना पा रहे, और हे विधाता मैं आपसे प्रार्थना करूं कि केक और भर्ज के दिए हुए जो पिंड उनके जल मुझको पर लोग में नहीं मिले, मैंने तिलांजलि और पिंड ये मुझको देने तो उसके हाथ के मुझको पर लोक में नहीं मिले, मैं आपसे यही प्रार्थना इस प्रकार से उनको साथ लेकर देखे और दशरथ जी कुछ लेके बहुत को दे तो वही सुमित्रा थी व्याग्रता ही कौशल है सुमित्रा आज की या रात्रि मेरे लिए काल रात्रि है, मैंने मेरा निश्चय मरण उस देश का पुत्र जो शरण है उसकी कथा मुझको याद आ गई और मुझको जो शराब दिया वो भी याद आ गया, तो आज रात्रि मेरी अष्टमृत्यु हो। कौशल्या ने पूछा महाराज शरण क्यों था, उसके पिता ने आपको श्राप क्यों दिया था, आपका क्या अपराध हो गया था और आज की रात्रि में आपकी मृत्यु है ये हम समझना चाहते। तब राजा दशरथ ने शरण की कथा की, राजा दशरथ बोले कि कौशल्या जो मेरी युवावस्था थी उस समय के मैं सिपाही की माँ पर ग्रस्त लगाया करता था रात में प्रजा की रक्षा के लिए और ग्राम के पशुओं की रक्षा के लिए, मैं रात्रि के बीच के वहां घूमया करता था और सरयू के किनारे जाकर करके जो रात्रि के वहां जो जंगली हिंसक जानवर जो आते थे जल पीने के वास्ते उनको मैं मारा, जो समझो कि शहर के जो जानवर है गऊ आदि उनको जो मारने वाले सिंह वगैरह जो है हाथी जो वगैरह है मनुष्यों को जो मार डालते हैं उनमें हसी सिंह और बाल उनको मैं मारा करता था। अंधेरी रात्रि के वहां मैं छिपकर बैठता और जल में जल के किनारे आगे जल पीछा तो उसके शब्द को मैं सुनकर के शब्द के जीवन में जानता उसको लक्ष्य बनाकर उसको मार जाता। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था, अंधेरी रात ही मैं सरजू के किनारे एक वृक्ष की ओट में बैठा था। मेरे कान में आवाज आई मानो कोई हाथी जल पी रहा। बात यह थी श्रवण कुमार जल अपने घर में भरा, जल घरे के मां जल भरने का जो शब्द है और हाथी की सूंड के द्वारा जल पीने से जो शब्द होता है वो दोनों ऐसा ही होता है। तो मैंने ये समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है, उस शब्द को लक्ष्य बना करके जिन्हें मैंने बाण मारा वो बाण श्रवण की छाती में जाकर के लगा और उसके लगने से ही अब वो व्याकुल हो गया और तो विलाप करने लगा और कहने लगा, हम लोग मन में रहकर तपस्या करते हैं और कंदमूल खा करके अपना गुजारा करते हैं, जीविका करते हैं, हमको किसने मार डाला और हमारे को मारने से हमारे को मारने से उसका क्या होगा, हमारा जो मानुष है वो भी काम में नहीं आता और हमने किसी का अपराध भी नहीं किया तो मुझ निरपराधी को बाण से किसने मार डाला। इस प्रकार करुणा का वचन सुनकर के राजा दशरथ कहते हैं कि हे कुशलेंद्र में द्वारा मैंने सोचा कि आज तेरे द्वारा कोई ब्राह्मण बालक की हिंसा हो गई, कोई तपस्वी का लड़का मारा गया, मैं व्याकुल होकर के कांपता हुआ उसके पास में आया और मुझको भय भी थोड़ा देखे थे। उस श्रवण कुमार ने मुझको आश्वासन दिया, धीर दिया कि राजा दशरथ तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मुझको मारने से आपको कोई बल मचा नहीं सकता, मैं ब्राह्मण का बालक नहीं हूँ, मैं तपस्वी ऋषि का लड़का हूँ, हम लोग यहाँ बन के मां कंदमूल लेकर अपना गुजारा करते हैं। राजन मुझको कोई बात का शोक नहीं है, मेरे मरने का भी मुझको शोक नहीं है, मुझको शोक है मेरे वृद्ध माता पिता है उनका, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, आंखों से अंधे हैं और प्यासे हैं। आधी रात के समय में मैं यहाँ जल भरने के लिए आया था, तो ये एक प्रकार से प्यासे हैं उनको जल पिलाने की उद्देश्य मेरी प्रार्थना है कि यहाँ थोड़ी दूरी के ऊपर मेरे पिता का आश्रम है, वहाँ मेरे माता पिता बूढ़े हैं, बैठे हैं, प्यासे हैं, आप उनको जाकर के जल पिला दें। और ये सारी घटना कह रहे हैं जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो रही, बस यही मेरी प्रार्थना है और मेरे बाण से बड़ी पीड़ा हो रही, उसको आप निकाल दो। तो व्यसत कहते हैं कि कौशल्य उसका बाण मैं जो निकाला बस उसी के साथ उसके प्राण छुचुर उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई, वो सरयू के किनारे गिर गया। मैं उसको वहाँ छोड़ करके और उसका जो घड़ा है उसके खोल पर रख करके उसके बताए मार्ग के अनुसार उसके पिता के आश्रम पर मैं पहुंच गया। पिता ने ये सोचा कि सरुण आया है, क्या देखती मैं चुप रहा, इसलिए मेरी बोली से छान लेंगे तो ठीक नहीं, अंधे आदमी। उसकी माता पिता ने सोचा कि लड़का बोलता नहीं है तो क्या रुष्ट हो गया। बोला बेटा सरुण तू बोलता क्यों नहीं, क्या तू रुष्ट हो गया? बेटा तू रुष्ट हो जाएगा तो फिर हम कैसे जाएंगे, हमारा तो तेरा ही आधार, हम तो एक प्रकार से तेरे आते थे, हमारा कोई अपराध हो गया हो तो बेटा माफ करना। तो राजा दशरथ ने सोचा कि नाम बोले काम नहीं चलेगा, तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं इस देश का राजा दशरथ, मैं आपको जल पिलाने के वास्ते यहाँ आया। राजन आप जल पिलाने के वास्ते कैसे आए? हमारा लड़का श्रवण वो जल बनने के वास्ते गया है, वो इस प्रकार से आकर जल पिला देगा, आप जल पिलाने के वास्ते कैसे आए? क्या हमारे लड़के के ऊपर कोई विपत्त घट गई? क्योंकि आप राजा होकर जल पिलाने के वास्ते हैं, बोले आप जल पी लो और फिर मैं आपने सब बात कहूं। तपस्वी ने कहा कि हम जल नहीं पिया, पहले सब बात हमको बताओ कि हमारे लड़के ऊपर ऐसी कौन सी दिवत घट गई जिससे वो नहीं आते है। वो समझते थे कि लड़के में आने की शक्ति होती तो लड़का जाता, ये राजा देव लेकर आया है, अरे कोई विशेष बात। तो दशरथ रोते हुए दुखी हृदय से थी वहां की सारी घटना थी कि महाराज मैं क्या कहूँ, रात्रि के समय के बीच मैं तर्क लगाता हूँ, तो जंगली जो हिंसक पशु है पशु है उनको मैं मारता हूँ, वह जल पीने के वास्ते सरजू पर आते जो जंगली हाथी जो संघवाद जो मनुष्यों को मार डालते हैं पशुओं को मार डालते हैं उनको मैं मारता हूँ, ग्राम के पशुओं की रक्षा के लिए और मनुष्यों की रक्षा। महाराज मुझसे धोखे में अपराध हो, आपका लड़का जल भरता था उसका शब्द ऐसा होता था कि मान लो कोई जंगली हाथी जल पीता हो, अंधेरी रात थी आधी रात का समय था और शब्द के जीवन को मैं जानता था, उस शब्द को लक्ष्य बना करके जो ही मैंने बाण मारा तो बाण आपके लड़के की छाती में आकर के आपका लड़का मेरे द्वारा मारा गया, आपके लड़के ने ये सब बात बतवाई थी, इसलिए मेरे माता पिता कहते हैं तो मैं आपको जल पिलाता था, अब इसी ने यह मार्ग बतलाया था, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, वो अपराध मैंने जानकर नहीं किया, अज्ञात में हो गया, भूल से हो गया, इसलिए तो माफ कर गया। उस